ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के लिए 22,000 करोड़ रूपये से अधिक की वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे 91,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और कई अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने इस वर्ष के खरीफ सीजन में किसानों को किफायती दरों पर फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने बिहार में 120 किलोमीटर से अधिक की लंबे वाली 4 लेन के ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने केंद्रीय कर्मियों के लिए 2% महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये इस साल की 1 जनवरी से लागू होगा। इससे केंद्र सरकार के 48,66,000 कर्मचारियों और 66,55,000 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रथम देश की विदेश नीति का मूल मंत्र बन गया है। भारत अब न केवल विश्व व्यवस्था में भाग ले रहा है बल्कि भविष्य को आकार देने और उसे सुरक्षित करने में भी योगदान दे रहा है। श्री मोदी कल नई दिल्ली में एक निजी टीवी चैनल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पहले भारत की विदेश नीति सभी से दूरी बनाए रखने की थी, लेकिन अब सभी के साथ मिलकर काम करने की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना के तहत 5 राज्यों बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरल के लिए 1,604 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समिति ने अक्टूबर 2023 के दौरान राज्य में विनाशकारी ग्लेशियर झील के फटने से उत्पन्न होने वाली बाढ़ से उत्पन्न होने वाली रिकवरी और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं के लिए सिक्किम के लिए 555 करोड़ से अधिक की राशि को भी मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें प्रशिक्षण और अन्य संबंधित उपकरण शामिल हैं। इन अनुबंधों की कीमत 62,700 करोड़ रूपये है। मंत्रालय ने बताया कि इन अनुबंधों से सशस्त्र बलों की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। यह हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 5,000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। रिजर्व बैंक ने 1 मई से ऑटोमेटेड टेलर मशीन ईटीएम से नकद निकासी पर बैंकों को 2 रूपये की वृद्धि करने की अनुमति दी है। रिजर्व बैंक ने एक परिपत्र में कहा कि मुफ्त लेन देन से अलग ग्राहक से प्रति लेन देन अधिकतम 23 रूपये का शुल्क लिया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि विधानसभा परिसर में पहली बार हिंदू नववर्ष मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर कल 30 मार्च को दिल्ली विधानसभा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और विधानसभा को सजाया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि इसे एक परंपरा के रूप में शुरू किया जा रहा है। म्यांमार में कल 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। थाईलैंड, उत्तर पूर्वी भारत और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप को लेकर चिंता व्यक्त की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड के नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी संभावित सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। म्यांमार और थाईलैंड में कल आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 144 हो गई है और 732 लोग घायल हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में कल चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से हरा दिया। जीत के लिए 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त।